اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرات میات الفارش مرتین، سورہ حج ہجر آیت نمبر 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہجر، سورت نمبر 15. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان دیا رحم والا ہے. الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی. وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے.
چودہ سے پارا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ جو کتاب ہے اس کی آیتیں جو ہیں اللہ نے کی اور روشن ہے، اور کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دیا ہمیں. ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اور قرآن روشن ہے. روشن یعنی اگر جو بھی قرآن لے گا، اب اس کو ہم سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کیوں دیا ہے، کس مقصد کے لیے دیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب کیوں دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کی شکل میں مجھے دی ہے یقین محکم پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب انسان جب اس قرآن کو لے گا، اللہ کے کلام کو سنے گا، سمجھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اور اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اس اللہ تعالیٰ اس کا دنیا آخرت دونوں روشن کر دیں گے. یعنی ایک نور اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا، ایک وہ نور حاصل کر لے گا، اللہ کی وہ صفات حاصل کر لے گا. تو اس قرآن کے ذریعے سے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. دنیا کی ساری کتابوں سے انتہائی یہ قرآن ضروری ہے. اس کے مطابق اگر ہم اپنے کو ڈھالیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تو دنیا ہی میں جنت مل جائے گی، اور آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام اپنی نشانیاں اور کائنات میں بھی دیے، اور اس کے اندر بھی واضح کھلی صاف طور پہ بتا دیا کہ اس قرآن کو کس طریقے سے تمہیں لینا ہے. اس قرآن کو ہم نے حفظ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، تجوید کے لیے رکھ دیا ہے، اور وظیفوں کے لیے رکھ دیا ہے، اور یہ شادی بیاہ اس پہ لڑکی کے اور اس کے کرنے کے لیے رکھ دیا. نہیں، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے. قرآن کا مقصد صرف انسان ہے. قرآن انسان کے لیے آیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اس کو لے کے اللہ کے رنگ میں اللہ کو پہچاننا. دنیا ہی میں اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور دنیا ہی میں ہم اللہ کا وہ نور حاصل کر لیتے ہیں. اسی کے ذریعے اس پہ عمل کر کے ہمیں وہ نور کی آنکھیں مل جائیں گی، جو قیامت کے دن ہم اللہ کا اس سے دیدار کر سکیں گے. یہ ہے روشن کتاب. اچھا، جب ہم لے لیں گے تو جیسے یہ روشن ہے ساری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے ہر چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بنائی ہے. تو یہ قرآن بھی نور ہے، ساری کائنات روشن ہے، خوبصورت ہے. اب جب یہ لے لیں گے ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کریں گے، تو جو قبر کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ جنت ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی، جو ہم تصور پہ بھی نہیں لا سکتے. ہم تو دنیا کی خوبصورتی اور چیزوں پہ مرے ہوئے अगर हमने इसको ले लिया तो दुनिया ही में हम खूबसूरत, हमारा दिल खूबसूरत हो जाएगा, इत्मीनान कल्ब आ जाएगा, अल्लाह का नूर आ जाएगा, अल्लाह की वहदानियत आ जाएगी और हम अल्लाह के रंग में रंग जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। ना दुनिया की कोई मुश्किलात रहेंगी, ना परेशानियां रहेंगी, हर गम से अल्लाह ताला, हर गम से दुनिया आखिरत दोनों गम से, माजी और मुस्तकबिल सारे गम से अल्लाह ताला हमें फारिग कर देता है, अगर हमने कुरान को, कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह का नूर समझ के लिया। सिर्फ तिलावत नहीं है, हिफ्ज नहीं है, तजवीज नहीं है, वजीफों के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है। अल्लाह कहता है कि अगर तुमने नहीं लिया, मुझे अल्लाह ताला पहले से वार्निंग कर रहा है, अल्लाह कह रहा है कि अगर रब रुबामा या वद्दुल लजीना कफरु लौकानु मुस्लिमीन, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो वक्त जब काफिर, काफिर यानी इनकार करने वाला, किसे? कुरान से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनकार करने वाला आर्जू करेगा कि काश मैं मुसलमान होता, मैं मोमिन होता। हम मुसलमान तो हम हैं लेकिन हम मोमिन नहीं है। तो अब ये आर्जू किस वक्त होगी, ये हमें समझना है। ये आर्जू किस, इस वक्त दुनिया में हमारी आर्जू तो है ही नहीं, ये कि काश मैं मोमिन होता, काश मैंने कुरान को समझा होता और कुरान के मुताबिक मैंने जिंदगी गुजारी होती। ये हर इंसान, मुसलमान भी और हर इंसान जो अल्लाह और रसूल का नाफरमान है, जो कुरान का नाफरमान है, कुरान से इनकारी है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने से इनकारी है, ये आर्जू कब करेगा? जब जहां नहीं आएगी, ये उस वक्त आर्जू करेगा। क्यों? क्योंकि सारे पर्दे हट जाएंगे, उसे नजर आ जाएगा कि मैंने क्या किया, वक्त जाया किया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कोई ये जिंदगी किस कोई काम ना, वो माल दौलत काम आया, ना इज्जत हाहू कुछ काम नहीं आया, कोई वजीफे काम नहीं आया, हज उम्रे कुछ भी काम नहीं आया। ये मैं मुसलमान की हैसियत से कह रही हूं कि कोई चीज काम नहीं आई। तो क्यों काम नहीं आई? क्योंकि हमारा तरीका, हमने समझा ही नहीं अल्लाह को, अल्लाह के मिजाज को नहीं समझा, रसूल पाकसल्लम का तरीका ले ही नहीं। अगर मुसलमान है तो अपनी मर्जी से मुसलमान है, अपनी मर्जी से सारे अमल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से हज उम्रे ये सब कुछ कर रहे हैं। हमने अल्लाह के मिजाज, जब तक मैं अल्लाह को मकसद जिंदगी नहीं बनाऊंगी और अल्लाह के कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं करूंगी, अपने पूरी जिंदगी में अपनी मर्जी छोड़ के अल्लाह की मर्जी नहीं लूंगी, मुझे कुरान समझ में नहीं आएगा, ये याद रखें। जो फिर अगर इसके बगैर हमने बहैसियत जैसे पैदाइशी मुसलमान है जिंदगी गुजारी और हज उम्रे किए, तो अल्लाह कह रहा है मैं राग की तरह, धूल की तरह उड़ा दूंगा, आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा। तो मुझे होश के नाखून लेने चाहिए कि वो वक्त हमारे ऊपर ना आए कि हम आर्जू करें कि काश मैं मुसलमान होती, मोमिन होती। मुसलमान तो हम हैं लेकिन मैं मोमिन होती। असल मोमिन है मुत्तकी और परहेजगार, मोमिन वो जो अपनी मर्जी छोड़ दे, अल्लाह की मर्जी ले ले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ले ले, पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल की रजा के हुक्म के मुताबिक, रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो मोमिन है। तो अब इस उसमें हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हम मोमिन बनना चाहते हैं कि नहीं। अगर बनना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि मोमिन कहते किसे हैं, उसकी खसूसियात क्या है, उसमें क्या सिफात होनी चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसकी जबान कैसी होनी चाहिए, उसके रवैये कैसे, वो जो अमल कर रहा है दुनिया में जिंदगी सुबह से शाम तक जो गुजार रहा है अल्लाह की मखलूक के साथ, जो वो जॉब कर रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहा है कि अपनी मर्जी के मुताबिक, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है कि अपने को, अपने नफ्स को और लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है, ये हमें सोचना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
आपने खापा नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता, छोड़ दीजिए, ये खुद अभी जान लेंगे।
फिर अल्लाह ताला फरमाता है पहले से, अब जो अल्लाह और रसूल को नहीं ले रहा और उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा और अल्लाह की तरफ सही तरीके से रुजू नहीं कर रहा, हमें तरीका सही लेना है। वैसे तो हमारी रुजू है, हम अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते, लेकिन हमारा रुजू इल्लाह नहीं है, हम में खलूस नहीं है, हमारी नियत साफ नहीं है। जहां भी दुनिया की मिलावट आ गई, नियत खराब हो गई, जरा सी भी, तो मुझे जरा सी भी दुनिया की मिलावट को शामिल नहीं करना। इखलास, अल्लाह ताला को इखलास पसंद है। अमल थोड़ा हो लेकिन इखलास इंतहाई दर्जे का हो, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर नहीं कर रहे तो जबरदस्ती तो है नहीं। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा, इसी तरह जो वक्त का इमाम है उनसे भी कह रहा है कि परेशान मत हो, ये लोग अगर नहीं ले रहे कुरान को, नहीं समझ रहे, छोड़ दो इनको, इनको छोड़ दो। जरहुम या कोलू या तमत्ताउलमोन, अल्लाह कहता है तुम इनको छोड़ दो, नहीं अपने को परेशान नहीं करो, नहीं गा रहे छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं है कुरान में, जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह अल्लाह ताला जबरदस्ती पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने तो वाज़े खोल के बता दिया, अपने कुरान भेज दिया, कुरान का से पहले अपना महबूब हमें दे दिया और फिर कुरान के मुताबिक उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया। अगर हम नहीं कर रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रसूल पाक सल्लम को भी और वक्त के इमाम को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जाए, खा लें, ऐश कर लें, उठा लें। ये जो झूठी उम्मीदें हैं, आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशें हैं, इसमें मशगूल है, मशगूल रहने दो, लेकिन इन्हें जल्दी पता चल जाएगा जो कुछ इन्होंने किया। अब ये जल्दी का पता चलेगा, ये जान का नहीं में पता चलेगा। इंसान की जो जिंदगी का जो पहली कयामत है वो जान का नहीं है, उस वक्त सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे, तो वो जान का नहीं है, वो उस वक्त कोई भी वापस नहीं आ सकता, वापस जिंदगी में नहीं आ सकता। बस वो आखिर हमारे पास ये थोड़ी सी जिंदगी है, हमें इससे मौका उठाना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ये बहुत कीमती जिंदगी का मौका है, हम इसे जाया कर रहे हैं, हम इसे रिश्तेदारियों में जाया कर रहे हैं, दुनियादारी में जाया कर रहे हैं, इधर जाया कर रहे हैं, उधर उधर नहीं। हमें सोचना है कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया, किस मकसद के लिए पैदा किया, क्या अल्लाह ताला ने मुझे शौहर के लिए पैदा किया, बच्चों के लिए पैदा किया, ये दुनिया वालों के लिए पैदा किया, इनके गमों के लिए, परेशानी को नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने लिए पैदा किया, मुझे उसको जानना है, उसको उससे कनेक्शन करना है इसी दुनिया में। शोहर कैसा भी है मुझे इससे मतलब ही नहीं है, इससे मुझे सोचना है। सास कैसी भी है मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि कैसी है, मुझे अपने को चेंज करना है, मुझे अपने आप को अल्लाह के रंग में ढालना है। जब मैं अल्लाह के रंग में अपने आप को ढाल लूंगी और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होगा और उसके मुताबिक मैं इस दुनिया में रहूंगी, उसके मुताबिक मैं काम करूंगी, बजाहिर तो तकलीफ होगी लेकिन दिल मुतमईन होगा, दिल में सुकून होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जब अल्लाह ने कह दिया कि जब तुम सही मानो में कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी, तो ना गम है ना परेशानी है, ना हाल का है ना मुस्तकबिल का, सारे गम अल्लाह ताला दुनिया ही में मुझसे ले लेगा। तो अब हमें समझना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं। अल्लाह कह रहा है कि छोड़ इनको, छोड़ दीजिए इन्हें, खाने पीने की छूटी जो उम्मीदें हैं और जो इनके मशगले हैं इसमें मशरूफ रहने, ये खुद जान लेंगे। जान करने के वक्त सबसे पहले सबसे ज्यादा जान कर हर इंसान को उस वक्त खो दिए। अब जब इंसान मर रहा होता है तो उसे सब नजर आ रहा होता है, वो बोल सकता है, वो कुछ कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता, उसको सब पूरी जिंदगी जो उसने किया वो उसके सामने होता है, खुली किताब होती है और वही फैसला हो जाता है, वही फैसला हो जाता है कि अल्लाह के जन्नत की खिड़की खुलेगी कि दोजख की खुलेगी, इल्लीन में जाएगा या सिज्जीन में जाएगा। ये तो हमें ये सोच के जिंदगी गुजारनी है, मुझे ये आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारनी है, मुझे कब्र को सामने रख के जिंदगी, मुझे अल्लाह के सवाल और जवाब कर सोच के जिंदगी गुजारनी है कि मुझे हर चीज का हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, मुझे वो सोच के जिंदगी। ये इंफरादी जिंदगी है, ये इज्तिमाई नहीं है, ये याद रखे, अल्लाह ताला के पास हर कोई इंफरादी तौर पर जाएगा। अल्लाह ताला कभी किसी का ये उजर नहीं सुना गया कि मेरा माहौल ऐसा था, मेरा शौहर ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे हालात ऐसे थे, ये कोई चंदा नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, कोई उजर नहीं सुनेगा। अल्लाह ताला हमें तो तैयारी करनी है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने मुझे दी है तैयारी के लिए, आखिरत की ये दुनिया अल्लाह ताला ने मुझे दी है अपने दीदार के लिए, इसमें मुझे मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, अपने को वक्फ करना है, तन मन धन सब लगा देना इसमें, अल्लाह की पहचान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हौसला में। अगर हम चाहते हैं कि हमें हौज़े कौसर पे अल्लाह ताला ले जाए और हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मिले, हमें अल्लाह का दीदार मिले, तो मुझे अपने टोटली अपने आप को चेंज कर, अपना जहन, अपनी सोच, अपना तरीक़ेकार, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों के साथ ताल्लुकात, अपनी जबान, हर चीज को मुझे कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालना होगा। ये सांचा लेना है, इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि उसके लिए मुकर्रर रिश्ता था। कोई ग्रोह अपनी मौत से ना आगे बढ़ता है ना पीछे रहता है। उन्होंने कहा कि वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है यकीनन तू तो कोई दीवाना है।
अच्छा, फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाता है वमा अहलकना मिन करियतन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। अल्लाह कह रहा है मुझसे कि मैं किसी को, किसी बस्ती को, किसी इंसान को हलाक नहीं करता जब तक उसका वक्त पूरा ना हो जाए। यानी अब इसे तो हमें ऐसे समझना है, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रही हूं तो मेरी उम्र अल्लाह ताला ने जो लिखी है ना जब ही आएगी, मेरी उम्र खत्म, मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगी कि मैंने एक गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला ने मुझे बुला लिया और उसकी सजा दे दी। नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ मेरी उम्र लिख दी गई है, वह मुकर्रर एक इंसान का और एक कौम का, हर एक का वह मुकर्रर है। जितनी भी नाफरमानियां कर लो जब तक वो वक्त खत्म नहीं होगा जो अल्लाह के यहाँ लिखा गया है, अल्लाह ताला नहीं बुलाता उसको, वो मरता नहीं है। जब वक्त पूरा हो गया तो फिर एक सेकंड ना इधर ना एक सेकंड दूसरे अल्लाह कहता है मां तस्बीको मिम उम्मतिन अजलहा वमा यस्ताखिरून। जब कोई ग्रो या मौत आए मतलब तो ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड। अब इस नुक्ते को समझना है जो हम मुसलमान नहीं समझते, सबसे हम लोग नहीं समझते। अल्लाह ताला कह रहा है कि जिसकी भी मौत आएगी तो उसका टाइम पूरा हो गया था, अल्लाह के नजदीक उसका टाइम पूरा हो गया था। जब उसका टाइम पूरा हो गया तो ना एक सेकंड वो रुक सकता है, ना एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। हर एक इंसान का टाइम लिखा हो, हमें तो मालूम नहीं है कौन सा टाइम है। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सा टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं मालूम तो मुझे 24 घंटे तैयारी में, अल्लाह की मुलाकात की तैयारी में गुजारना है। 24 घंटे मुझे अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना है। ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी कर रही हूं तो फौरन अल्लाह ताला मुझे बुला लेगा और मुझे इनामात देगा। नहीं, हर एक का वक्त मुकर्रर है, हर एक कौम का, हर एक फर्द का वक्त मुकर्रर है। जब एक वक्त मुकर्रर है, मौत जो है इसका माना मौत जो है वो जिंदगी है, इसके बाद मौत नहीं है, इसके बाद जिंदगी है और वो खत्म होने वाली नहीं है। ये जो जिंदगी है, दुनिया की जो जिंदगी है 100 साल, ज्यादा से 100 साल होंगी फिर खत्म। फिर इंसान जो मर गया, हम कहते हैं मर गया, हालांकि मर गया नहीं होता, विसाल हो गया। यानी मिल, विसाल का मतलब है मिल जाना। किससे मिल गया? अल्लाह से। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रंग में रंग गया वो अल्लाह से मिल जाएगा। जो शैतान के रास्ते पे चला, अल्लाह की नफरमानी में चला, वो शैतान के उससे होगा, मिलेगा। यानी दोजख उसके लिए दोजख है, अल्लाह वालों के लिए जन्नत है, नाफरमानों के लिए दोजख है, मुसलमानों के लिए तो दोजख का गड़ा है। तो जो मौत है उसमें हमें, हम जो जिस तरीके से मौत का हमारे हम इर्द गिर्द जो मौत या खानदान में जो मौत होती है उसको जिस तरीके से हम लेते हैं वो तरीका हमारा गलत है। हमें सोचना चाहिए कि परेशान, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में तो है नहीं। क्या हिकमत, जवान बेटा चला गया, क्या हिकमत थी, क्या वजह थी? जो अल्लाह ताला ने ले लिया वो अल्लाह बेहतर जानता है। जब अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के यहाँ जवान बूढ़ा बच्चा कुछ भी नहीं है। जिसका जिस टाइम वक्त पूरा हो गया वो चला जाएगा, और अल्लाह वो वक्ती तौर पर तो वो हमारी नजरों से गायब हो गया, लेकिन वो जिंदा हो गया, अब उसको मौत नहीं है। और फिर जो हमने अल्लाह की नाफरमानी की, तो इल्लीन और सिज्जीन, इल्लीन फरमाबरदारों मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए होगा, क्यामत तक उसमें होंगे, और सिज्जीन वो जो अल्लाह के नाफरमान है वो उसमें रहेंगे। जो इल्लीन है उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जो सिज्जीन है वो उसके लिए दोजख की खिड़की। अब हमारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने लोग चले गए हमें तो नहीं मालूम, कहाँ है, कहाँ रखा हुआ अल्लाह ताला ने। बस अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि आलम बरज़ख में है इल्लीन और सिज्जीन। तो मुझे तैयारी करनी है इल्लीन में जाने के लिए, कि मैं अल्लाह की मुलाकात, मेरी अल्लाह से मुलाकात हो जाए। तो जाहिर है जब तक क्यामत नहीं आती ये आलम बरज़ख में सब सब है, क्यामत आएगी फिर अल्लाह ताला सबको निकालेगा, सबको होगा। तो अब मुझे अल्लाह कह रहा है कि परेशान होने की तो जरूरत नहीं है, ये जो मौत है इसके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वक्त मुकर्रर हो गया, अल्लाह का फैसला है, क्या हिकमत है, क्यों अल्लाह ताला ने एक जवान बेटे को ले लिया, शौहर को ले लिया, बाप को ले लिया, कि वो तो वो बेहतर जानते हैं, मालिक तो वो है, खालिक तो वो है, जिंदगी तो उसके हाथ में है, मुझे क्यों परेशान, मैं क्यों परेशान हूं। अब मुझे ये सोचना चाहिए, एक औरत बेवा हो गई और उसकी हालत आप लोग देखें, बेवा क्यों हो गई, तो परेशानी का की है। ये हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा तरीकाकार, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारी सोच है, जो हमें ये मौत तकलीफ देती है, क्यों तकलीफ देती है, हालांकि मौत तो विसा अल्लाह से मुलाकात है। मुझे तैयारी करनी चाहिए अल्लाह से मुलाकात की, तो फिर परेशानी का की। अगर मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारी की तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए, सबको खुश नहीं होना चाहिए कि जो अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यहां हमने तैयारी नहीं की, हम दुनियादार हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी में लगे तो हमें तकलीफ होती है। तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ना एक सेकंड पीछे होगा ना एक सेकंड आगे होगा। जब हमें ये यकीन आ गया तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, किसी किस्म की घबराहट की जरूरत नहीं होगी, डिप्रेशन की जरूरत नहीं होगी, पागलपने के दौरे नहीं पड़ेंगे। अगर मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह के हाथ में है हर एक चीज, अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर जवान उसने मेरा शौहर ले लिया, मेरा बाप ले लिया, जवान बेटा ले लिया, ये उसकी मर्जी, मैं क्यों दखल अंदाजी करूं, मैं क्यों बयान कर रही हूं, मैं क्यों बैन कर रही हूं, क्या वजह है बैन करने की। मैंने नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला इसके पीछे जब मैं बैन कर रही हूं और मुझे गम है, मुझे इतनी तकलीफ है, हद से ज्यादा तकलीफ है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो किया वो गलत है, अल्लाह ने हमारे साथ जुल्म किया। अब देखिए ये पीछे जो चीज आती है वो हमें ये समझना चाहिए, ये उन लोगों के लिए जो मोमिन बनना चाहते हैं, जो हम मुसलमान हैं उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो अल्लाह और रसूल का रास्ता है उससे उन्हें अपने का आप को चेंज, अपनी सोच को, अपने हर चीज को चेंज करना होगा। ये नहीं है कि हम उसी धर्रे पे चलते जाए और हम कहें कि हम मुसलमान हैं और हम मोमिन हैं। हमें मोमिन वाला वो रवैया, वो तरीका, वो सब इख्तियार करना होगा तो मोमिन होता है। मेरे अमल से वो चीज जाहिर होनी चाहिए कि मैं जो अल्लाह पे पूरा यकीन है, वही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है, सब कुछ वही है। दुनिया से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं, लोगों से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं। ये तो आप हमें इसके लिए तो कोशिश करनी होगी, इसके लिए मेहनत करनी होगी, अपने पे काम करना होगा, बगैर काम के तो नहीं होता। तो अगर मैं तैयार हूं तो हमें इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। फिर है वकाल मजनून, हुजूर को तो ये लोग मानते नहीं थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कभी क्या कहते, कभी ये मजनून कहते, कभी जादूगर कहते, तरह तरह के अलकाब हुजूर को दिए हुए थे। तो अल्लाह ताला कह रहे जिसको मैंने कुरान दिया है वो मजनून नहीं है, मजनून नहीं है, उसमें मैंने कुरान उतारा है। देखिए कुरान अल्लाह ताला ने हर पहाड़ों पे भी के सामने भी पेश किया, सबके सामने कुरान में अल्लाह ताला ने पेश किया, किसी ने भी कबूल नहीं किया, इंसान ने कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने इंसान में ये सलाहियत रखी है। तो अब जो अल्लाह वाले जो पैगंबर है उनको अल्लाह चुनता है, सारी उनकी तरबियत अल्लाह ताला करता है सब कुछ। फिर उसके बाद जो मोमिन होता है उनको भी अल्लाह चुनता है। उनकी तरबियत भी अल्लाह ही के अल्लाह किसी के जरिए से करवाता है। सब कुछ के पीछे अल्लाह ही है, इंसान बहैसियत है खुद कोई उसकी हैसियत नहीं है। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मजनून कह रहे हैं, तो अब मजनून तो इसको ये समझे, मजनून क्यों कह रहे हैं, मैं एक इस मिसाल से आपको दू। एक पागलखाना है और उसमें एक सही सालिम आदमी चला जाए तो वहां पागल कौन होगा? वो जो पागल है वो तो अपने को सही समझेंगे, वो जो सही आदमी क्या है वो उसको पागल समझेंगे। बिल्कुल सेम यही सूरत हाल है, जो अल्लाह का आशिक है और वो जो दुनियादारों में चला जाएगा तो कहेंगे ये क्या, ये तो मजमून है, ये क्या बात कर रहा है, किस बात का हमें समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम तो दुनिया में ढले हुए हैं, दुनिया के सांचे में, दुनिया की मोहब्बत के सांचे में ढले हुए, और वो हमें निकाल रहे हैं अल्लाह और रसूल की तरफ। वो हमसे कह रहे हैं कि अल्लाह को ले लो, दुनिया पे हम के पीछे मत पड़ो, दुनिया की चीजों के पीछे मत पड़ो, सिर्फ अल्लाह और रसूल के ले लो। तो अब जाहिर वो जब वो ये कह रहे हैं तो हमें तो फर्क नजर आ रहा है कि हम तो हैं दुनिया के तलबगार और वो कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ो और अल्लाह को ले लो। तो जाहिर है ये यही हर एक के साथ क़यामत तक ये होता रहेगा, अल्लाह वालों के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, हर दुनिया से ला ताल्लुक होने को कह रहे हैं। ला ताल्लुक होना जहन और दिल के लिहाज से ला ताल्लुक, जिस्म किस लिहाज से ला ताल्लुक नहीं हो सकते, गार में नहीं बैठ सकते, राहबानियत इस्लाम में नहीं है, जद्दोजहद है, मेहनत है, सब अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक है। अब जब अल्लाह वाले हैं तो वो अल्लाह की तरफ, सब कुछ उन्होंने अल्लाह की तरफ कर दिया, अल्लाह ही की रजा को देख रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत को देख रहे हैं, जो कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दुनिया का कुछ नहीं है, तो लोग पागल ही समझेंगे। एक एक आशिक है, मैं अब इसकी मिसाल दूसरी तरह, एक मजरू है, अल्लाह का आशिक है, अपने शेख का आशिक है, तो वो जो आशिक होता है, अब दुनिया वाले आशिक ले लें, जो आशिक होता है, कोई लड़का किसी लड़की पे आशिक हो गया वो सब कुछ उस पर लगा नहीं देता, इसी तरह लड़की जब किसी से मोहब्बत करती है वो सब कुछ लगा नहीं देती, इसी तरह जब हम अल्लाह से आशिक इश्क करते हैं, हम अल्लाह वाले से इश्क करते हैं, तो हम अपना तन मन धन सब लगा देते हैं। अब वो एक दुनियादार वाला जो लगा रहा है वो, और जो अल्लाह के अपने मुर्शिद पे जो लगा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जो दुनिया वाला है वो तो दुनिया की चाहत में लगा हुआ है, दुनिया उसे चाह रहा है, उसे तो सब सामने नजर आ रहा है, वो तो दुनिया की चाहत में सब कुछ लुटा रहा है। अब लड़का भाग गया या लड़की भाग गई तो पागल नहीं हो जाएगा? एक आदमी तो पागल हो जाएगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, सारा मेरा सब लूट लिया, या उस औरत ने लूट लिया या मर्द ने लूट लिया। लेकिन जब हम अल्लाह के आशिक होते हैं, अल्लाह वाले के आशिक होते हैं, जब हम उस पर तन मन लगाते हैं, तो हमारे दिल में ये नहीं होता कि हमें कुछ वापस मिलेगा, हमें सिर्फ वापसी का क्या है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत। तो हम जब तन मन धन लगा रहे होते हैं तो ये नहीं कि जाया हो रहा है, नहीं, उसके साथ हमें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत आती है, वो रिस वो रोशनी हमें मिल रही होती है, जो हम लगा रहे थे खुलूस से इश्क से वो हमें मिल रही होती है। अल्लाह ताला कहता है एक दोगे तो दस लगाऊंगा, अब जब अल्लाह ने कहा है एक दोगे, हम इस नियत से नहीं लगा रहे, हम अपने इश्क में लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहे हैं ना, अल्लाह तो गालिफ नहीं गाफिल नहीं है ना, वो तो हमें सुन रहे हैं ना, तो फिर जाया क्या हो गया? कोई चीज जाया नहीं होती, ये याद रखें, कोई चीज जाया नहीं होती, हमें अपनी पूरी अल्लाह ताला ने हमसे तिजारत की है, अल्लाह ताला ने कहा मैं तुमसे तिजारत करता हूं, क्या वो कि तुम अपनी मर्जी अपना तन मन मुझे दे दो और उसके बदले में तुम मेरी रजा ले लो, तुम जन्नत ले लो, ये कोई तो थोड़ा सौदा, अल्लाह ने मुझसे ये सौदा किया हुआ है, तो मैं अल्लाह से यही सौदा करना चाह रही हूं। तो जाहिर है ये सौदा करने के लिए मुझे सामने एक इंसान चाहिए होगा, अल्लाह जो अल्लाह का चुना हुआ, उसके जरिए से मैं ये सारा सौदा करूंगी। पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं आया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता? हम फरिश्तों को वक्त के साथ ही उतारते हैं और उस वक्त को मोहलत दिए गए नहीं होते।
अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है लो मातीना बिल मलाइकते इन कुंता मिन सादिकीन। ये कहते हैं कि हम अपने को रसूल कहते हैं तो इनके पास फरिश्ता क्यों नहीं आता, इनके पास फरिश्ता क्यों नहीं आता, पर इनके साथ फरिश्ता होना चाहिए ताकि हमें नजर आए और हम यकीन कर लें। ये इन लोगों ने मुतालबा किया, ये मुतालबा किया कि फरिश्ता क्यों नहीं होता इन लोगों के पास। चलो बस यहाँ नहीं था, रब बनाते ना कुछ दुनिया सुनाता हूँ उस लाख।